हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आदित्य वहीं बैठा रह गया। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसे सच में ड्राइवर वाली फीलिंग आई। वो सोचने लगा, क्या इस लड़की ने मुझे अपना ड्राइवर समझ रखा है? क्या वो एक मिनट रुककर मुझे अंदर आने के लिए ऑफर नहीं कर सकती थी? चाहे जो भी हो, मैं भी एक बड़ा बिजनेसमैन बंदा हूँ यार। लेकिन अब वो किलसकर सीधा अपने मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। इस वक्त जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसके दादाजी के साथ साथ कबीर और अभय एक साथ बैठे हुए थे। अभय अब धीरे धीरे काफी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन उसके मुंह की सूजन अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हालांकि उसका दर्द काफी हद तक कम हो गया था। फिलहाल आदित्य को देखते ही कबीर बोला, क्या हुआ? उस लड़की ने अपने मुंह से अपनी सच्चाई उगल दिया नहीं? देखा तुमने उसका सच? हम लोगों के सामने आने वाला था ना? किस तरह से उसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी ज्यादा घटिया निकलेगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब लास्ट में उससे मिला था तो कितनी नाजुक सी थी, एकदम नाजुक कली जैसी, और अब तो उसका एक एक बाजू 2.5 किलो जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक दो नहीं 5 लोगों को सीधा कर दिया हो। कबीर की ऐसी बातें सुनकर आदित्य थोड़ा चौंक गया था। तभी दादाजी ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, कहाँ गए थे तुम? मैंने सुना है कि तुम उस लड़की के साथ एक बार फिर साइट में गए थे। ऐसा कैसे कर सकते हो? वो लड़की किसी भी हालत में ठीक नहीं है, एक नंबर की धोखेबाज है, तुम्हें उसके आसपास भी नहीं होना चाहिए। दादाजी की बात सुनकर आदित्य थोड़ा झल्लाते हुए बोला, दादाजी प्लीज, मैं पहले से ही काफी ज्यादा टेंशन में हूँ। आप उसकी उल्टी सीधी बातें करके मेरी टेंशन और मत बढ़ाइए। और वैसे भी मैं उससे मिलने के लिए नहीं गया था। मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है कि मैं उससे मिलने या प्यार की भीख मांगने गया था। मैं अपने काम से गया था। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है, और प्लीज़ इस तरह की उलझनों के बीच में मैं अपने प्रोजेक्ट के साथ किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप नहीं जानते कि वो प्रोजेक्ट मेरे लिए क्या मायने रखता है। ये कहकर आदित्य सीधे अपने कमरे में चला गया। तभी बलबीर जी गुस्से से भिनभिनाते हुए बोले, मुझे ही कुछ करना होगा। उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकालो कबीर। आखिर वो कब क्या करने वाली है पता लगाओ, और फटाफट उसके पास जाने की तैयारी करो। अब जो बात होगी सीधे सीधे होगी। अब मैं अपनी दोस्ती की भी कोई परवाह नहीं करूंगा। कबीर ने तुरंत थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और जल्दी ही उसे पता चल गया कि झलक दोपहर को एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाने वाली है। ये पता चलते ही बलबीर जी बोले, अब तो वही मुलाकात होगी। उधर सिद्धार्थ भी झलक के बारे में ऐसी प्रतिक्रियाएं सुनकर एक बार फिर गुस्से में होटल पहुंच चुका था। उसका वहां केवल आज रात का स्टे था, और अगली सुबह वो निकल जाने वाला था। लेकिन झलक का एकदम सपाट चेहरा, उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशन नहीं था। ऊपर से उसका बेपरवाह अंदाज सिद्धार्थ को और ज्यादा परेशान कर रहा था। उसे तो लगा था कि जब वो झलक के सामने जाएगा तो झलक रो पड़ेगी और उससे भीख मांगेगी कि वो उसके साथ कुछ गलत ना करे। लेकिन यहाँ तो झलक का अंदाज ही अलग लेवल का था। उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और वो चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। फिलहाल उसने तय कर लिया कि वो एक आखिरी बार उससे मिलकर ही वहां से जाएगा। इसी सोच के साथ वो आज रात और रुक गया। आर्यन काफी खुश था कि वो कल वापस जाने वाला है। उसने सोचा, कल झलक के साथ लंच करने के बाद वो यहाँ से निकल जाएगा। कम से कम अपने दोस्त की जो जगह खाली हुई थी वो तो भर जाएगी। वो जानता था कि झलक के साथ जो किया उस वक्त उसकी मजबूरी थी, लेकिन उससे माफी मांगकर कहीं ना कहीं वो खुद को थोड़ा शांत महसूस कर रहा था। हालांकि ये भी सच था कि सिर्फ और सिर्फ खुराना परिवार से दुश्मनी मोल लेने के डर से उसने झलक की मदद नहीं की थी। फिलहाल वो खुद को काफी हद तक बेहतर महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर झलक सीधे अंदर चली गई थी। दादाजी, अनामिका, आरव और सौरभ हॉल में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। स्नेहा जी रोहन को सुलाने के लिए अभी कमरे में गई हुई थी। जैसे ही झलक वहां पहुंची वो सीधा जाकर सबके पास बैठ गई। दादाजी उठकर उसके पास आए और बोले, बेटा आखिर तुम उस परिवार से पूरी तरह दूरी क्यों नहीं बना लेती? बलबीर राणा मुझे कई बार मैसेज भेज चुका है, मिलने के लिए बुला चुका है, और जिस तरह से हम अनु को लेकर आज उनके घर पहुंच गए थे, वो लोग हमें इस तरह देख रहे थे मानो तुम्हारे साथ साथ हमारा भी दिमाग खराब हो गया हो। झलक बस हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में छुपा तूफान साफ नजर आ रहा था। वहीं अनामिका झलक की मुस्कुराहट देखकर खड़ी हो गई और बोली, ये क्या, तुम मुस्कुरा रही हो? रियली मुस्कुरा रही हो? कैन यू बिलीव दैट? कितनी मुश्किलों से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिलती है, और आज तुम यूं मुस्कुरा रही हो, इसका मतलब साफ है तुम्हें इन सब में कहीं ना कहीं मजा आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी दादाजी भी बोल पड़े, बेटा इतना सब अपने अंदर खिचड़ी बनाने की क्या जरूरत है? तुम चाहो तो एक पल में सारी चीजें क्लियर कर सकती हो। उसी वक्त सौरभ जी बोले, अरे है, जानता हूँ अपनी बेटी को, उसको बोलने या करने से ज्यादा देखने और सही वक्त का इंतजार करने में इंटरेस्ट है। अगर उसने अभी तक आदित्य राणा या किसी और को सच नहीं बताया है तो जरूर उसके पीछे कोई खास कारण होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जैसे ही सौरभ जी ने झलक को समझने का दावा करते हुए ये कहा, झलक हल्का सा मुस्कुराई, उनके पास गई और बोली, शायद आप ठीक कह रही हैं। इतना कहकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई। आरब जी थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अपनी ही बेटी के बारे में वो कितना कम जानता है, और देखो जो उसे पाल रहे हैं वो उसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं। सौरभ जी ने आरब जी के मन की भावना समझते हुए उन्हें गले लगा लिया और कहा, वो सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी बेटी है, वो हमारी बेटी है, और देखना हम उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां भर देंगे, सारी नेगेटिविटी को बाहर फेंक देंगे। सौरभ जी की बातें सुनकर आरव जी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी ओर अनामिका तुरंत दिग्विजय जी के कान में धीरे से बोली, उसकी मुस्कुराहट मुझे नॉर्मल नहीं लग रही, दादाजी जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं, मुझे लगता है हमें उस पर 24 घंटे नजर रखनी चाहिए, और कल तो आप उसके साथ रहेंगे ही, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। आरव जी भले ही सौरभ जी की बातों से संतुष्ट हो गए थे, लेकिन अचानक उन्हें तेज सिरदर्द होने लगा। अनामिका तुरंत उनके पास गई, उन्हें संभालने लगी और दवाई दी। वो तब तक उनके पास बैठी रही जब तक वो गहरी नींद में नहीं सो गई। उसके बाद वो सीधे झलक के कमरे में पहुंची। कमरे में जाते ही उसने सीधा सवाल किया, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम झलक? झलक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है अनामिका, मैं बस कल आर्यन से मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर अनामिका हैरान रह गई, लेकिन वही तो तुम्हारा दोस्त होने का दावा करता था, और असल में एक नंबर का धोखेबाज निकला, उसने तुम्हारी किसी तरह की परवाह नहीं की, और तुम उसी से मिलने जा रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ऐसे धोखेबाज लोगों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अनामिका की बात सुनकर झलक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने पास बैठाया और बोली, तुम जानती हो इस जिंदगी में मुझे हर तरफ से धोखेबाज लोग ही मिले हैं, अगर कोई सच्चा रिश्ता मिला है तो वो तुम हो, दादाजी हैं, माँ पापा हैं, रोहन है, मुझे सच्चा रिश्ता सिर्फ अपने परिवार में मिला है, बाहर की दुनिया में कोई सच्चा रिश्ता नहीं मिला।
और रही बात आर्यन की, तो मैं जानती हूँ वो क्या सोच रहा है, अगर उसे मेरी हल्की सी मुस्कुराहट देखकर ये लग रहा है कि मैंने उसे माफ कर दिया है, तो उसे उस गलतफहमी में रहने दो, मुझे डरकर पीछे नहीं हटना। जिस पावर पोजीशन और स्टेटस के लिए उसने मेरा साथ छोड़ा था, जब मैं उसी पावर पोजीशन पर उसके सामने खड़ी होंगी, तब जाकर मेरा असली मकसद पूरा होगा। झलक की ऐसी बातें सुनकर अनामिका पूरी तरह हैरान रह गई। उसने झलक को गले लगा लिया और बोली, यार मानना पड़ेगा, तुमने बहुत दूर की सोची है, सच में मज़ा आ जाएगा जब सबके चेहरे देखने लायक होंगे, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या कल? झलक ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, वैसे भी उसे लगता है कि मैं आदित्य राणा के लिए काम करती हूँ, उसकी कोई असिस्टेंट हूँ, और मैं उसे उसी गलतफहमी में रहने देना चाहती हूँ। ये सुनकर अनामिका मुस्कुराई और बोली, ओके बाबा, समझ गई, मेरी सीक्रेट बिलियनेयर बहन, जो करना है करो, लेकिन हाँ, इस बार कामयाबी हमारी ही होगी। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दीं। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा का खून इस वक्त खौल रहा था। वो अपनी माँ नैना ओबेरॉय, उर्वशी खुराना और रणविजय के साथ बैठी हुई थी और उसकी दिमाग में कोई बड़ी साजिश आकार ले रही थी।